दोस्तों, भारतीय मिठाइयों में रसगुल्ले ज्यादातर सबकी पसंद है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, सभी लोगों को मिठाई के तौर पर अपनी पसंद करनी हो तो रसगुल्ले पर 100% अपनी पसंद आती है। और आजकल के वैश्वीकरण के युग में तो देश विदेश में एक्सपोर्ट होने के कारण विश्व भर की चाहना रसगुल्ले ने पाई है। तो चलिए आज जानते हैं इस मिठाई के इतिहास के बारे में दिलचस्प बातें। वैसे तो रसगुल्ले बंगाली मिठाई के तौर पर जानी जाती है, लेकिन रसगुल्ले सबसे पहले किसने बनाए, कहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, उसे लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्यों में तनाव है। दोनों ही राज्य अपना दावा कर रहे हैं कि रसगुल्ले की उत्पत्ति वहां पर हुई। उड़ीसा के लोगों का कहना है कि आज से करीब 700 साल पहले भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के तौर पर रसगुल्ले बनाए जाते थे। कहा जाता है कि रथ यात्रा में साथ न ले जाने के कारण लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज थी और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ले खिलाए थे और इस रसगुल्ले को उस समय पे खीरा मोहना नाम से जाना जाता था। वैसे तो रसगुल्ले या फिर खीरा मोहना भगवान के प्रसाद के लिए बनाए जाते थे, इसीलिए इसकी रीत को मंदिर तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन ये मिठाई की बनाने की पद्धति आम लोगों तक कैसे पहुंची? तो उड़ीसा का एक गांव है पहाला, यहाँ पे पशुधन बहुत था और लोग बचे हुए दूध को फेंक देते थे। जगन्नाथ पुरी मंदिर के एक पंडित से ये व्यय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को रसगुल्ले कैसे बनाया जाए ये सिखाया जाए तो बहुत सारे दूध की बचत हो सकती है, और उन्होंने गांव वालों को रसगुल्ले बनाना सिखाया और इसी वजह से आज ये प्रदेश रसगुल्लों के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। पहाला में मिलने वाले रसगुल्ले की खास बात या विशेषता ये है कि ये रसगुल्ले सफेद नहीं होते। यहाँ पर चन्ना या फिर यूं कहें कि जो पनीर होता है उसको बेक किया जाता है या सेका जाता है और उससे उसे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर मिले तब तक पकाया जाता है और उसके बाद वहां से बनते हैं रसगुल्ले। तो यहाँ के रसगुल्ले सफेद नहीं लेकिन ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये बात तो हमने की उड़ीसा की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दावे की। पश्चिम बंगाल राज्य का दावा है कि रसगुल्ले को पहली बार एक बंगाली सज्जन नवीन चंद्र दास ने बनाया वर्ष 1867 में। यहाँ पे रसगुल्ले को रसगुल्ला कहते हैं। नवीन चंद्र दास के प्रपोत्र धीमन दास बताते हैं कि उनके दादा ने वर्ष 1864 में एक मिठाई की दुकान खोली थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उनके दादा ने यह तय किया कि वो एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलेंगे जो मिठाई एक्सक्लूसिवली उनके पास बनती हो, यानी कि वो खुद उस मिठाई को बनाएंगे और उनके सिवाय ये मिठाई किसी और दुकान पर उपलब्ध नहीं होगी। और उन्होंने किया शुरू एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद रसगुल्ले का प्राथमिक रूप, जिसे चन्ना बोलते हैं या फिर हम खीरा बोलते हैं, वो अस्तित्व में आया। जब नवीन चंद्र दास इस खीरे में से बॉल्स यानी कि लड्डू जैसा आकार बनाने जा रहे थे, तब वो बार बार खुल जाता था और उसका रूप कुछ आकर्षक नहीं दिखता था। इस परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए, और वापस शुरू हुआ एक और दौर प्रयोगों का। अंत में दही, चीनी और उनके साथ रीठा मिलाया गया और बनाए गए रसगुल्ले के बॉल्स। धीरे धीरे वो अपनी रेसिपी के मास्टर हो गए और उनके बनाए रसगुल्ले पूरे कलकत्ता में मशहूर हो गए। नवीन चंद्र दास के रसगुल्ले के सबसे बड़े प्रशंसक थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर। अन्य एक बंगाली कथा के मुताबिक 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में हरदन मोइरा नामक हलवाई से एक अन्य मिठाई बनाते समय गलती से बन गए रसगुल्ले। अगर ये सोचा जाए कि रसगुल्ले पश्चिम बंगाल या उड़ीसा राज्य की मिठाई है, तो फिर वो देश दुनिया में प्रसिद्ध कैसे हुए? कहा जाता है कि भगवान दास बागला नामक एक गैर बंगाली व्यापारी थे जिन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद थे। वो जब भी पश्चिम बंगाल आते तब बहुत सारे रसगुल्ले ले जाते और अपने परिवारजनों और व्यापारी संबंधों में बांटते। उन्हीं के कारण रसगुल्ले राजस्थान की रासबरी, उत्तर प्रदेश का राजभोग और बनारस की रसमलाई बने और अंग्रेजों के लिए ये बने चीज डंपलिंग। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सन 1930 से रसगुल्ले विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अन्य एक और दिलचस्प बात है, एक ब्रिटिश शेफ विलियम हारोल्ड थे जिन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद थे। वो खास भारत रसगुल्ले बनाने की पद्धति सीखने आए। वो पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगहों पर घूमे। हर एक घर, हर एक प्रसिद्ध जगह पर रसगुल्ले बनाने की पद्धति के बारे में पूछा, लेकिन हर जगह पर उन्हें रसगुल्ले बनाने की सामग्री और पद्धति अलग अलग मिली। अंत में वो रसगुल्ले के 100 जितने बॉक्स लेकर ब्रिटेन वापस लौटे। उन्हें आशा थी कि वो खुद ही सीख लेंगे या समझ लेंगे कि रसगुल्ले कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्य में रसगुल्ले बनाने वाले के तौर पर औपचारिक स्वीकृति पाना एक दिलचस्प खींचतान बन गई है। दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार से वर्ष 2015 में रसगुल्ले के उद्भव का भौगोलिक स्थान जानने के लिए इतिहास विशेषज्ञों की समिति बनाने की अपील की थी। अपना दावा मजबूत करने के लिए उड़ीसा का कहना है कि उड़ीसा साहित्य में रसगुल्ले का जिक्र 1868 से पहले है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल राज्य ऐतिहासिक सबूतों के साथ एक डॉजियर तैयार कर रहा है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये खींचतान कहीं पर भी वाजबी नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले चाहे कहीं पर भी पहले बने हो, लेकिन आज देश दुनिया में सबकी पसंद बने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको भी रसगुल्ले बहुत पसंद होंगे और आपको उसी तरह से ये अंश भी पसंद आया होगा। आपको ये अंश कैसा लगा हमें फेसबुक के माध्यम से जरूर बताइएगा।